ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातर्वोभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं अध्यात्मदीपमतितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां कर्णयः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज की इस भागवत की क्लास में। हम लोग आज छठे अध्याय श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद 15वें अध्याय के 25वें श्लोक को देखेंगे। ये अंगिरा ऋषि के उपदेश हैं महाराज चित्रकेतु को जो शोक से ग्रसित थे। श्लोक 25 सामने है आपके। अयम हि देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः देहिनो विविध क्लेश संतापकृत उदाहृतः। अभी हम लोग श्लोक को शुरू करते हैं। देखिए श्लोक का पिछले 24वें श्लोक से लिंक है। दृश्यमाना विनार्थेना न दृश्यन्ते मनोभवः कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्मणि मनसो भवन। उसमें अंगिर ऋषि ने बताया था कि जैसे स्वप्न में व्यक्ति सोच ले कि मैं परिवार कर लिया है, स्त्री है, बच्चे हैं, पत्नी है, और उसमें ऐसा नहीं है कि स्वप्न में वो दिखते नहीं हैं, लेकिन वह केवल एक मन की रचना होती है। और जैसे स्वप्न नष्ट हो जाता है तो उसी प्रकार से स्वप्न का परिवार भी नष्ट हो जाता है, लेकिन उस स्वप्न में अभिनिविष्ट होने के कारण व्यक्ति दुख भोगता है या दुख का अनुभव करता है। उसी प्रकार से इस जगत में जो भी संबंध है या रिश्तेदार है वे बहुत समय के लिए हमारे साथ रहने वाले नहीं है। अगर आप आत्मा के अनादित्व अनादिकाल से आत्मा है अनंत काल तक रहेगा उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह जीवन ऐसा भी नहीं है। जैसे स्वप्न कुछ क्षणों के लिए होता है और टूट जाता है, ऐसे यह जीवन भी कुछ क्षणों के लिए है। जैसे हिरण्यकश्यप जी भी बोलते हैं कि लोग होटल में आकर के कुछ समय के लिए साथ में बैठते हैं फिर चले जाते हैं, उस प्रकार से जगत में रिश्तेदार हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसे घृणा किया जाए, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप को समझते हुए चलना चाहिए। तो वहां पे 24वें श्लोक में यह कहा गया कि इन रिश्तेदारों की ममता की वजह से दुख भोगता है। क्या कहा गया कि इन तथाकथित भौतिकता में लिप्त व्यक्ति जो है, तथाकथित नहीं भौतिकता में लिप्त भौतिक चेतना में लिप्त व्यक्ति रिश्तेदारों के कारण जो उसकी ममता होती है रिश्तेदारों में उसके कारण वह दुख भोगता है। अब इस 25वें श्लोक में 25वां श्लोक दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। इसमें ये बता रहे अंगिरा ऋषि कि इस ममता का कारण क्या है। मैं समझता हूं लिंक आप समझ पा रहे होंगे। 24वें में यह बोला कि जो स्त्री पुत्र इत्यादि की आसक्ति है इसकी वजह से व्यक्ति दुख भोगता है। कितने लोगों के बारे में सुनते हैं हम कि उसका एक्सीडेंट हो गया, अच्छा ठीक, लेकिन अगर सुन ले कि अपने बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो बहुत कष्ट होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं बच्चे तो बहुत सारे घूम रहे हैं समाज में, लेकिन अपने बच्चे से ममता करते हैं और उनको खिलाने पिलाने के बारे में सोचते हैं। लड़कियां बहुत सारी घूम रही हैं, लेकिन किसी को एक लड़की को व्यक्ति अपनी पत्नी मानता है और उसके योग क्षेम के बारे में सोचता रहता है, तो ये ममता के कारण होता है। तो यहां पे वो इस श्लोक में वो बताएंगे कि इस ममता का कारण क्या है, कोई और कारण नहीं है, ये देह ही है। देह में हम अपनी आत्मबुद्धि करते हैं, देहात्म बुद्धि, मैं ये देह हूं और देह से बनी वस्तुओं में ममता होती है। लेकिन ये देह हमें क्या दे रहा है, देह क्या है और ये हमें क्या दे रहा है, ये आज का विषय है। क्या विषय है? देह किससे बना है और देह हमको क्या उपहार दे रहा है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये आवश्यक है, इससे थोड़ा वैराग्य होता है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम देह हैं तो कभी इस जगत से निराशक्त नहीं होंगे। तो अब श्लोक में आप देख सकते हो यहां पे पहला शब्द है अयम। अयम मतलब ये, ही मतलब ये ही, अवधारणा के लिए, अवधारणा मतलब एम्फेसिस, और कोई कारण नहीं है इस ममता का, ये देह ही, देहो, ये जो देह है जो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक है। द्रव्य मतलब पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, आप जानते हो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ज्ञान मतलब ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा। क्रिया मतलब कर्मेंद्रियां, हाथ पांव इत्यादि, पांच कर्मेंद्रियां होती हैं। इनसे बना हुआ, इनके संघात, इनको एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसको देह कहा जाता है। तो हमने क्या सीखा, देह किससे बना हुआ है, ज्ञान इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से और पंच महाभूत से। और ये किसको मोहित कर रहा है, किसको कष्ट दे रहा है, देहिना, देहिना मतलब देह को धारण करने वाले आत्मा को। पहली लाइन समझ में आ रही है, अयम देह, अयम देह, ये देह जो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक है, पंच महाभूत से बना है, कर्मेंद्रियों से बना है, ज्ञानेंद्रियों से बना है, यह ही, इसके अलावा और कोई नहीं, यही देही यानी आत्मा को दुख देने का कारण बना है। पहली बात समझ में आ रही है कि शरीर का स्वरूप क्या है, और हमें समझ लेना चाहिए कि आत्मा न तो द्रव्यात्मक है, न क्रियात्मक है, न ज्ञानात्मक है, मतलब ज्ञानेन्द्रियां हैं इसकी, लेकिन वो कह सकते हैं स्पिरिचुअल है, भौतिक ज्ञानेन्द्रियां नहीं है। अब यह हमें क्या कह सकते हैं, ये देह है, ये देही अर्थात आत्मा को क्या उपहार दे रहा है, तो कह रहे हैं देहिनो विविध क्लेश संताप कृद उदाहरता, कृद मतलब कारण। तो ये जो देही है, हम सब लोग जो इस देह को धारण किए हुए हैं, इसको विविध क्लेश दे रहा है। ये तो हिंदी समझने वाला बड़े आसानी समझ सकता है, विविध मतलब विभिन्न प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, तीन प्रकार के, और उन तीनों के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, है ना, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, तीन तो ये मोटा मोटा हो गया, उसके अलग अलग तरह से जो है हमको पिन मारी जाती है। तो विविध क्लेश दे रहे हैं, संताप मतलब कष्ट दे रहे हैं, क्लेश और पीड़ा प्राप्त हो रही है, और उदारता ऐसा कहा जाता है। और इस पे टीकाओं में कहा गया है, कौन कहते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि सामान्य लोग तो क्या कहते हैं, हम तो सुखी हैं। प्रभुपाद जी से भी एक व्यक्ति बोला, हमें तो कोई कष्ट नहीं होता, हम तो सुखी हैं, हम संतुष्ट हैं। तो प्रभुपाद बोले, संतुष्ट तो गधा भी होता है, खूब मेहनत करता है और उसके बाद वो समझ नहीं पाता कि घास तो जंगल में भी अवेलेबल है, इसमें इतनी मेहनत करने के लिए क्या जरूरत है। महाराष्ट्र बता रहे थे कि कुत्ता कहीं भी चलता है तो दौड़ के जाता है, लेकिन पहनने के लिए चड्डी भी नहीं होती उसके पास। तो अगर भागने से ही सब कुछ मिल जाता तो कुत्ते के पास सब कुछ होता, भाग भाग के ही हर चीज प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस जगत में हम भागते भागते मर ही जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन वस्तुओं को जो हम अपने देह के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, वे केवल दुख का कारण बनेंगे। बहुत सुंदर बात मैं सुन रहा था कि आत्मा तो स्वयं आनंदमय है, जैसे ये बल्ब अपने आप तेजोमय है, अग्नि स्वयं तेजोमय है, तो जल जो तेज से तेजोमय बिल्कुल नहीं है, क्या जल अग्नि को प्रकाश दे सकता है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अग्नि स्वयं तेजोमय है, जल और पृथ्वी तेजोमय नहीं है, तो क्या अग्नि को ये तेज दे सकते हैं? कदापि नहीं दे सकते। तो उसी प्रकार आत्मा स्वयं आनंदमय है और ये देह जो है यह क्या है, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक है, भौतिक है, तो इस शरीर से हमें कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? तो ये बोलना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास में जाने के बाद, क्लास देने के बाद हम इसको भूल जाते हैं। क्लास के समय याद रहता है, क्लास सुनने के समय याद रहता है, गेट के बाहर जाने के बाद सब भूल जाते हैं। तो ये बार बार सुनना आवश्यक है कि ये जो शरीर है द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, ये हमको केवल कष्ट देने के लिए दिया गया है, इसकी आत्मा को कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर हम पानी में कूदें, क्योंकि हम पानी में सांस नहीं ले सकते हैं, तो हमको एक क्या कहते हैं स्कूबा डाइविंग सूट, समझते हैं आप, ऑक्सीजन सिलेंडर बांध लेते हैं उसको, पूरा कुछ कपड़ा पहन करके वो फिर पानी में कूदते हैं, क्योंकि हम पानी के जीव है नहीं। उसी प्रकार से हम इस जगत के है नहीं, इसलिए इस जगत में रहने के लिए, इसको भोग, इसका भोग करने के लिए द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक शरीर दिया जाता है, जिसको बुद्धिमान लोग कहते हैं कि केवल कष्ट देने के लिए, ठीक है। तो यानी कि इस जगत में किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकार करना, गर्व करना महामूर्खता है। हर तरफ से पिटाई हो रही है और उसके बाद कोई कहे कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूं तो वो महान मूर्खी कहलाएगा। हम सभी लोग इस प्रकार से अगर कभी भी गर्व करते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता, यह सब बिल्कुल बहुत बड़ा अहंक, बहुत बड़ी मूर्खता होगी अगर हम कहीं सोचें कि हम कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कुछ सोच रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं और मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। आपको ये बात समझ में आ रही है, कैसे आ रही है ये भी नहीं पता। तो कोई कहे हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम क्लास समझ ले रहे हैं, मैं बोलूं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, क्लास बोल ले रहा हूं, लेकिन हम दोनों में से किसी, दोनों ही व्यक्ति को यह पता नहीं कि हम कर कैसे रहे। यही मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि भगवान आप हृदय में बैठे हुए हैं, जीव के प्राण को संचालित करते हैं, उसके द्वारा उसके मन, ये जो ज्ञान द्रव्य क्रियात्मक शरीर है वह एक्टिवेट होता है, और उससे जब वह अपने आपको सेवा करता है तो किसने किया, सब कुछ भगवान ने कराया, लेकिन फिर भी भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं उस सेवक के। ये भगवान की कृपा, क्या कह सकते हैं, कृपालुता है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं ये ज्ञान जो दूसरों को देता है वह मुझको सबसे अधिक प्रिय है। तो ज्ञान देने की शक्ति कौन दे रहा है, भगवान ही दे रहे हैं। गीता कौन दिया, भगवान ने दिया। परंपरा को बनाए रखा किसने, भगवान ने। लेकिन इस ज्ञान को देने वाले को कहते हैं मुझे बड़ा प्रिय है, मेरे पास वापस आ जाएगा। तो हमेशा कोई भी कार्य करने की शक्ति हमें कर प्राप्त हो रही है तो भगवान से ही प्राप्त हो रही है, हमेशा याद रखना चाहिए। आगे पढ़ते हैं तो शब्दों के अर्थ आप समझ गए, हम अनुवाद पढ़ते हैं। देहात्म बुद्धि के कारण जीवात्मा अपने शरीर में जो भौतिक तत्वों, संस्कृत दिखाइएगा अभी पहले आप उसका वो संस्कृत दिखाइए, भौतिक तत्व अर्थात द्रव्य, पांच ज्ञानेंद्रिय अर्थात ज्ञान तथा मन समेत पांच कर्मेंद्रियों का संपुंज है। संपुंज का मतलब है संगठन, जैसे हम लोग सब लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं, तो उसी प्रकार से ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और भौतिक तत्वों को मिला दिया जाता है तो इसके संघात को शरीर कहा जाता है। मग्न रहता है कौन, मग्न रहता है जीव। देखिए हम अगर गीता भागवत से कभी नहीं सुने होते तो ये कभी नहीं सोच पाते कि हम ये शरीर नहीं है, सुनने के बाद भी नहीं सोच पाते। कभी कभी भक्त भी लड़ाई करने लगते, कहते जानते नहीं मैं कौन हूं, तो उससे पूछो आप कौन हो, आप बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से हो, हम जानते हैं कि आप कौन है, स्वीकार करेंगे हम, जानते नहीं मैं कौन हूं। प्रवचन करने के बाद भी ये मन में आ जाता, जानते नहीं मैं कौन हूं। मेरा अनुभव इस प्रकार से, एक बार कार्तिक में मुझे साइड वाले गेट में प्रवेश करना था साउंड की सेवा करने के लिए, और निक सिक्योरिटी था नया, जिसने मुझे रोक दिया। तुरंत मन में आ गया, जानते नहीं कौन हूं मैं, मंदिर का मैनेजर, बोला नहीं लेकिन मन में भाव आ गया। फिर मैंने शांत किया, मैंने कहा भाई जाने दो, सेवा करना है। तो भगवान जो है इस प्रकार से टेस्ट करते हैं बहुत आपको। तो हम लोग ये शरीर नहीं है लेकिन इसमें मग्न रहते हैं कि यही शरीर है, इसी शरीर को पोसते रहते। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात महाराज श्री बोल रहे थे कि इस जड़ शरीर को जो से कुत्ते खाएंगे या अग्नि में प्रवेश कर दिया करा दिया जाएगा, इसको तो मल मल के नहलाते हैं, लेकिन दुनिया में लोग, भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में लोग ठाकुर जी के विग्रह को स्नान नहीं कराते, उनका ड्रेसिंग नहीं करते, इसको तो खूब ड्रेसिंग करते, लेकिन उस हम लोग तो जो ड्रेसिंग करते भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, लेकिन है ना कितने आश्चर्य की बात, एकदम तुरंत उसको बाहर निकाल दिया जाएगा जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसको नहलाने धुलाने में तो खूब लगे रहते हैं, चमकाने में, पोछने में, लेकिन भगवान के विग्रह की सेवा नहीं करते। तो मग्न है पूरा तरह शरीर में। मन के कारण जीवात्मा को तीन प्रकार के, आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक ताप सहन करने पड़ते हैं, अतः यह शरीर समस्त दुखों का मूल है। तो ये कैसे हम मन के कारण द्वारा दुख भोगते हैं, उसका हम वर्णन प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते समय करेंगे। तात्पर्य, पंचम स्कंद में ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा, आसन्नपि क्लेशद आस देह, अनित्य होते हुए भी यह शरीर संसार के समस्त सुखों का कारण है। कोई रिएक्शन नहीं, सब सो रहे हैं क्या, मैंने जानबूझ के गलत पढ़ा, सब एकदम चुप,
अरे यहाँ दुखों का लिखा हुआ है तभी कोई रिएक्शन नहीं, अरे साधु जी कुछ भी बोल के चले जाएंगे सब स्वीकार कर ले, हाँ 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 ऐसा नहीं है, सभी दुखों का कारण है। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, अरे भाई अगर शरीर थोड़े समय के लिए होता और खूब सुख देता तो भी दिक्कत नहीं होती, थोड़े समय के लिए है और लगातार कष्ट का ही कारण है, ये शिक्षा दे रहे हैं। और इसको क्यों शिक्षा दी जा रही थी वहां पे पांचवें स्कंद में श्री स्वामी कहते हैं कि जब तक हृदय में कुछ वैराग्य की बात नहीं सुनेंगे तो भक्ति में दृढ़ता भी नहीं होगी, इसलिए वैराग्य की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। खूब अच्छे से सुनना चाहिए वैराग्य के बारे में और ये किस प्रकार से शरीर को दुख दे रहा है इसके बारे में सुनना आवश्यक है। तो कह रहे हैं ये कि समस्त दुखों का कारण है, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, संपूर्ण भौतिक सृष्टि मनोरथ पे आधारित है, ये थोड़ा समझना चाहिए। देखिए ये मतलब क्या है इसका, ये बड़ी गंभीर लाइन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पूरी भौतिक सृष्टि किस पे आधारित है, मन के रथ पे, रथ जहां भाग रहा है मन का उसके अनुसार हमारी गति हो रही है। इसको वीर राघवाचार्य जी कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं कि अनादि काल से मन में भोग की वासना है। अनादि मतलब आप ये नहीं कह सकते कब से है, तो अनादि काल से भोग वासना से वासित जो हमारा मन है उसमें भोग की इच्छा है, और क्या सोचते हैं हम इसको प्राप्त, इस भोग को प्राप्त करके सफल हो जाएंगे, सारी मेहनत तो इसीलिए कर रहे हैं हम लोग। अब जब उस कर्म को करते हैं पहले के संस्कार की वजह से, तो वह कर्म करने का संस्कार और प्राप्त होता है, मन में छाप बन जाती, और जब वो भोग के कर्म कर रहे हैं तो दो प्रकार की चीज होती है, एक तो विषय सुख दुख परता हो जाती है, अर्थात विषय के सुख और दुख के पीछे ही भागने में हमारा जीवन पूरा बीत जाता है, ये तो मेरी बातें समझ में आ रही है ना। और दूसरा विषय के सुख के बाद जो दुख प्राप्त होता है उसको भोगते हैं, और उसके बाद इन सारे कार्यों को करने की वजह से मन में भोग का संस्कार बन जाता है, और फिर मन जो है दोबारा ऐसी इच्छाओं से प्रेरित होकर और अधिक इच्छाओं से इस प्रकार से प्रेरित होकर फिर ऐसे कर्म करता है, और जीव एक के बाद एक शरीर धारण करता रहता है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप, तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, अब आपको समझ में आया कि पूरा जगत मनोरथ पे क्यों स्थापित है, मन कल्पना कर रहा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। अब परम पूज्य गिरिराज महाराज ने ये उदाहरण दिया था और मैं कई बार बोलता हूं, उदाहरण थोड़ा सा गंदा है लेकिन महाराज जी ने बोला है अपने जीवन से तो मैं बोलने का साहस कर रहा हूं। जब वह एक लड़के थे, भक्त नहीं थे, महाराज जी स्वयं भागवत क्लास में बोल रहे हैं तो उनका अनुगमन करके मैं बोल रहा हूं किस प्रकार से मन के द्वारा हम सोचते हैं कि हम सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो कह रहे थे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बैठे थे और उनका मित्र उनके गर्लफ्रेंड के सामने बैठा, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बैठा था, और टेबल के नीचे वह उनका मित्र उनके पांव को सहला रहा था और सोच रहा था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के पांव को सहला रहा है। तब ये देखते हैं, इसे कहते हैं मनोकल्पना, उसको वही सुख मिल रहा था जो सुख नहीं, सुख की कल्पना। अगर मैं कल्पना करने लग जाऊं कि मैं यहां का प्रेसिडेंट हूं तो ना होने हो जाऊंगा कल्पना करने से, या मैं जगत का सृष्टा हूं, सोचने को तो आप कुछ भी सोचते रहिए जैसे हम सपने में सोचते रहते हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। आनंदमय जीव को इस दुखमय शरीर से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे किसी भी स्थिति में चला जाए, चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर ले, चाहे कितने परिवार के लोग इकट्ठे हो जाएं, वह केवल दुख ही देने वाले होंगे, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मनोरथ पे आधारित है, तो इस मन के रथ को भगवान की ओर ही मोड़ना चाहिए। किसी भी कितना ही खा लें, कितना ही सो लें, कितने बच्चे पैदा कर लें, कैसे भी बच्चे पैदा कर लें, बुद्धिमान या कम बुद्धिमान या कैसे भी, कितना ही रक्षा कर लें, मन कभी संतुष्ट नहीं होने वाला, और ये केवल अगले जन्म का कारण बनने वाला है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, संपूर्ण भौतिक सृष्टि मनोरथ पे आधारित है। संपूर्ण मतलब केवल इस जगत को मत पकड़िए, स्वर्ग की बात भी कर लीजिए, ऊपर और चले जाइए, सब जगह व्यक्ति सोच रहा है कि कृष्ण से संबंध को भूल करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ऐसे नहीं हुआ थोड़ा वैसे हो जाऊंगा, वैसे नहीं हुआ थोड़ा ऐसे हो जाऊंगा। तो ये मनोरथ है, मन को भगवान में लगाना चाहिए, भगवान में जब मन लगेगा तभी सुख को प्राप्ति कर सकता है। सवे पम साम पनो धर्मो यथो भक्ति रोक्ष जय अहेतु की अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धि। ये प्रश्न उठाया गया भागवत में कि आत्मा को प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी, सवय उसी पर धर्म से जिससे भगवान में प्रेम हो जीव को सुख प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इस मनोरथ को बंद करना चाहिए। मन कभी कभी हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यदि हम एक वाहन खरीद लें तो हम भौतिक तत्वों को का यथा पृथ्वी जल वायु तथा अग्नि का
लोहे प्लास्टिक तथा पेट्रोल आदि के मिले जुले रूप से सुख भोग कर सकते हैं। पंकज जांगीर प्रभु ने बहुत सुंदर बात कही, बोले भाई कोई व्यक्ति बहुत महंगी कार में घूम रहा है और एक व्यक्ति सस्ती कार में घूम रहा है, दोनों ही कारें किससे बनी है? लोहे से, कोई चिन्मय वस्तु से बनी नहीं है। तो जो महंगी कार वाला व्यक्ति, उसको सुख क्या मिल रहा है? जब उसकी कार रास्ते में जाएगी तो लोग थोड़ा पीछे मुड़ के देखेंगे। हाँ, कार वस्तुता वही भौतिक तत्वों से बनी है तो वो सुख अधिक नहीं देने वाली। कई बार मैं प्रश्न करता हूं कि प्रसाद आप टेबल पे खाओ या जमीन पे खाओ तो कहां अच्छा लगेगा? क्या उत्तर है? एक खाना चाहिए की बात नहीं कर रहा हूं, कहां अच्छा लगेगा? एक ही जैसा लगेगा, है कि नहीं? लेकिन ये मन की धारणा हो जाती है कि अगर मैं टेबल पे खा रहा हूं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा मन जो है हमको घुमा देता है, कह सकते हैं हमको भ्रमित कर देता है, उन वस्तुओं में सुख की धारणा कर देता है जिसमें कोई सुख है नहीं। इस संबंध में कई बार आपने उदाहरण सुना होगा मृग तृष्णा का। मैं कई बार इस उदाहरण को देता हूं, बहुत सुंदर उदाहरण है ये। आप सब लोग मृग तृष्णा को देखे हुए हैं, इंग्लिश को मेमराज कहते हैं उसको, राजस्थान में हम लोग गए थे, कई बार देखने को प्राप्त हुआ। तो आपको हमको दिख रहा है कि वहां पानी है थोड़ी दूरी पे, और पानी क्या वहां पे है? नहीं है। और जब हम जैसे जैसे पास जाते हैं पानी गायब हो जाता है, और तुरंत ही उतनी ही दूरी पे आगे फिर पानी का निर्माण हो जाता है, निर्माण नहीं अनुभूत ऐसे लगता है। और इस सारे प्रोसेस में अगर हमारी गाड़ी में बोतल नहीं है पानी की तो हमारी प्यास बढ़ जाती है। यह है मनोरथ, ये वस्तु मिल जाएगी सुखी हो जाऊंगा, ये वस्तु मिल जाएगी वह सुखी हो जाऊंगा, और इससे तृष्णा बढ़ती जा रही है, हृदय की जलन बढ़ती जा रही है, तो ये केवल व्यक्ति को जलाएगा। तो यही प्रभात बोल रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं का, इसका मतलब ये नहीं कि कार का उपयोग नहीं कर सकते, कार को भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि कार से सुखी हो जाऊंगा तो नहीं हो सकता। एक भक्त बता रहे थे कि वो बहुत धनी व्यक्ति के पास 400 कार है। एक सिंपल सा प्रश्न, एक व्यक्ति एक बार में कितनी कारों में बैठ सकता है? बहुत इजी है, एक ही कार बैठ सकता है। तब ये बताइए कि क्या उसने पहली कार मारुति कार खरीदी होगी? स्वाभाविक सी बात है कि उसकी कार बहुत महंगी होगी, ऑडी फॉडी कुछ खरीदी होगी। तो यदि वह एक कार से संतुष्ट हो जाता तो दूसरी कार क्यों खरीदता? तो जब वह दो कार से संतुष्ट नहीं होगा तो 400 कार से भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि इन भौतिक तत्वों से हम कभी संतुष्ट हो नहीं सकते, जब तक इस जगत में है इनको उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। पांच भौतिक तत्वों, पंचभूत तथा आंख कान और जिह्वा आदि पांच ज्ञानेन्द्रियों व पांच कर्मेंद्रियों तथा हाथ और पांव के बल पर कार्य करने के कारण हम भौतिक स्थिति प्राप्त करने में उलझ जाते हैं। ये मैंने आपको भी समझा दिया था, ज्ञानेन्द्रियों से और कर्मेंद्रियों से। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय मैं समझता हूँ सब लोग समझते हैं या रेगुलर सुनते हैं, उसको नहीं समझा रहा। तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों से हम कार्य करते हैं, क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि अनादि काल से हमारे हृदय में भोग की वासना है। नहीं नहीं प्रभु जी, मेरी तो भोग की वासना नहीं, मैं तो शुद्ध भक्त हूं। ये शरीर कैसे मिला फिर आपको? ये कहते हैं रंगे हाथों पकड़े गए, सीसीटीवी लगा हुआ है, तो सीसीटीवी की आवश्यकता नहीं है। ये जो शरीर है यही दिखा रहा है कि पिछले जन्म में हम फेल हो गए थे, नहीं तो भगवान के धाम होते। पिछले जन्म में मृत्यु के समय भगवान का स्मरण नहीं किया, क्यों नहीं किया? भोग की वासना थी, उस भोग की वासना की वजह से ये शरीर प्राप्त है, स्वाभाविक सी बात है। तो अब हमको यह सीखना है कि हम भले ही, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, हमको अगर शास्त्र का वचन सुनने को नहीं मिला तो हम इस जगत में फंसे ही रहेंगे। ये तो स्पष्ट है, मन में भोग की वासना है, हम भोग के कार्य करेंगे, वासना और बढ़ जाएगी, फिर वैसे कार्य करेंगे। लेकिन जब हम शास्त्र से सुनते हैं कि हमें क्या करना चाहिए शास्त्र के अनुसार, तो यद्यपि भोग की वासना है लेकिन मैं वैसे कार्य नहीं करूंगा। राग द्वेष व्यवस्था, क्या है श्लोक? राग द्वेष विमुक्त अस्तु विषयान इंद्रियाचरण आत्म वैशेर विधेय आत्मा प्रसादम अधिकच्छति। भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए तो भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं राग द्वेष, फिर से बोल रहा हूं, राग द्वेष, राग और द्वेष, ये जो है राग मतलब भौतिक वस्तु में आसक्ति और द्वेष मतलब कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं, तो उसके आधार पर हम इस कार्य जगत में कार्य करते हैं। वो हमारे मन की वजह से ही होता है। जैसे हमने कई बार देखा प्रसाद समय
हमारे बगल में कोई बंगाली वैष्णव बैठे हैं तो उनको नीम बैंगन दे देंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, आह। और एक बार गलती से मैंने उसको सामान्य बैंगन की सब्जी लेकर के रख लिया था तो मेरे से तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मैंने कहा मैं तो नहीं खा सकता। वस्तु वही है लेकिन एक व्यक्ति को राग है, एक व्यक्ति को द्वेष है, नहीं चाहिए हमको, इस प्रकार से है। तो राग और द्वेष के अनुसार ना चल करके मैं अगर आत्म वैश्य अपने आत्मा यानी मन को इंद्रियों को वश में करके भगवान में लगाता हूं तो भगवान कहते हैं प्रसादम अधिगच्छति, कृपा प्राप्त होती है। तो यानी वासना होते हुए भी, इच्छा होते हुए भी मैं उन भोगों में प्रवृत्त ना होकर के भगवान की सेवा में लगूं शास्त्रानुसार तो मैं इस वासना से मुक्त हो जाऊंगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। ये बात हमें सीखनी चाहिए। तो उलझते कैसे हैं तो बड़ा स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आता ही होगा, ठीक है। मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूं, थोड़ा तेज जा रहा हूं, स्लो डाउन। इस प्रकार हमें तापत्रय आध्यात्मिक आदि दैविक तथा आदि भौतिक कष्ट सहने होते हैं। तो यह तो बड़ा स्पष्ट है, आध्यात्मिक मतलब हमारे मन और शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये अच्छा न लगना का मतलब क्या है, हमारा मन आज मूड ठीक नहीं है, तो ये आप जानते हो ये मन से होने वाले कष्ट है। आदि दैविक जो देवताओं के द्वारा दी जाते हैं, आदि भौतिक जो हमें आसपास के लोगों से प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों से, मच्छरों से और हमारे प्रिय रिश्तेदारों से जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, जितने जो उनके बारे में हम सोचते हैं कि उनको बहुत प्रेम करते हैं। इस पे एक बार व्यक्ति ने प्रश्न किया, मैं इस लाइन को पढ़ता हूं। मन केंद्र बिंदु है क्योंकि उसी से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, मतलब इन तीनों दुखों को भोगने का कारण मन है। ये बड़ा सुंदर तरह से एक भक्त ने बताया कि आप ये केंद्र है, ये चीज केंद्र है इसकी, अब इसके चारों ओर एक आवृत्ति है, सर्किल आप समझ सकते हो। तो ये जो हमारा मन है इसके चारों ओर एक पहला सर्किल है, वह हमारे मन और मन का या आत्मा के आसपास है, मन और शरीर का जो उसे कष्ट देते हैं और इसे कहेंगे आध्यात्मिक कष्ट। उसके बाद दूसरा घेरा क्या है, आदि भौतिक कष्ट जो हमें आसपास के जीवों से प्राप्त होता है, और तीसरा घेरा क्या है, आदि दैविक कष्ट जो देवताओं के प्राप्त होता है। तो मान लीजिए हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां गुंडों की तीन लाइन बनी हुई है। मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं और मुझे घेर लिया जाए, पहले घेरे में एक कुछ सैनिक है, उसके बाद दूसरे घेरे में है, फिर तीसरे घेरे में है, तो मैं इनसे कैसे बचूंगा इस घेरे से ऊपर उठ करके। तो यानी कि मन क्योंकि इस देहात बुद्धि में आसक्त है, इस शरीर में आसक्त है अविद्या के कारण, इस कारण से इन कष्टों का वह अनुभव कर रहा है, इन दुखों का अनुभव कर रहा है। उदाहरण के लिए मैं एक बार प्रवचन करने के लिए जा रहा था आगरा में, तो हमारी गाड़ी टवेरा में हम लोग बैठे हुए थे और साइड से एक बस गई और एक व्यक्ति ने पान थूका जो कि हमारी गाड़ी के शीशे के ऊपर आकर के लगा। अब दिखाई तो बड़ा स्पष्ट पड़ रहा है कि उसने हम पर थूक दिया है ना, क्या उत्तर है, क्या उत्तर है, थूका ना हम पर, गाड़ी भी थूका कि हम पर थूका। लेकिन जो व्यक्ति उस गाड़ी में आसक्त है वो क्या बोलेगा, अबे तूने मेरे पे थूका, बोलते हैं ऐसे, उसके बाद झगड़ा भी हो जाता है। कभी किसी की बाइक वाले को हल्का सा मार दीजिए, तुमने मुझको मारा, तुमको नहीं मारा, तुम्हारी गाड़ी को स्पर्श कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग, अच्छा अब यह तो कोई बहुत बड़ी परेशानी थी, लेकिन अगर वो थूक वाकई हमारे पर, हमारे शरीर पर पड़ती तब भी क्या सोच पाते, ये परीक्षा जीवन में कभी ना कभी होने वाली है। एक भक्त यहां इंग्लिश क्लास से प्रवचन कर रहे थे, बहुत सीनियर डिवोटी हैं और बहुत अच्छे भक्त भी हैं, तो उनके ऊपर क्लास के समय एक कबूतर ने बीट कर दिया और बिल्कुल उद्विग्न नहीं हुए, बोले आई डिजर्वड इट, आई मस्ट से दैट आई डिजर्वड इट, मुझे कहना ही होगा कि यह मेरे लिए क्या कहेंगे आवश्यक था, और प्रवचन करते रहे। परम पूज्य महाराज श्री राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कोई सन्यासी पे थूक दे, ये महाराज के शब्द हैं, कोई सन्यासी पे थूक दे और उसके मन में भी उद्वेग ना हो तब वो माया को जीत लिया। हम जानते हैं एक महान भक्त थे जो गोदावरी से स्नान करके आए और एक मुसलमान थूक देता था, फिर जाके स्नान कर लेते थे, फिर आ जाते थे, फिर थूकता था, फिर स्नान कर लेते थे, तीन चार पता नहीं पांच छह बार हुआ। उसके बाद उसको बहुत ग्लानी हुई, उसने क्षमा मांगा उनसे, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने तो बहुत अच्छा किया, आपकी वजह से मुझे आज सात बार गोदावरी में स्नान करने का मौका मिला। और यहां तो हम इसी में चिंता में है कि हे तुमने मेरे को आरती नहीं दिखाई, जानते नहीं मैं सीनियर डिवोटी हूं, या प्रसाद के समय आपको स्वीट देना भूल गया, तूने मेरे को स्वीट नहीं दिया, कैसा डिवोटी है, क्या ट्रेनिंग मिली है। तो कब तक हम इस भौतिक चेतना के लंगर को डाले रहेंगे। लंगर समझते हैं, एक कहानी शिला भक्ति से ठाकुर सुनाते हैं, सुना होगा आपने। शादी की पार्टी थी, तो शादी की बारात जो होती है वो रात में गई, तो नाव में बैठे हुए थे और चप्पू चलाने वाले को, नाविक को बोला कि चलाओ भाई चलाओ, तो पूरी रात वो चलाता रहा और सब दारू पिए हुए थे, शराब पिए हुए थे। देखा सुबह हो गई और हम वहीं पे वहीं बैठे हुए हैं, तो कहते हैं तूने चलाया नहीं, कहते नहीं साहब मैं देखिए पसीना पसीना हो गया, पूरी रात चला रहा था मैं, कहते नहीं नाव तो यहीं बैठी हुई है। तो देखा कि जो है ने लंगर नहीं उठाया। तो ये लंगर क्या है, इस भौतिक शरीर की आसक्ति, इसीलिए बार बार शास्त्र में इस लंगर को उठाया जा रहा है। देख लीजिए अंगिरा ऋषि जब पहले दूसरी बार मिल रहे हैं, पहले जब मिले थे तो उनकी चित्रकेतु महाराज की बहुत आसक्ति थी, लंगर पूरा गहरा पड़ा हुआ था, बच्चे में बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, लंगर उसी में फंसा हुआ था, तब वह कोई बात नहीं सुन पाते, वो बोलते हैं इसी प्रसंग में। तो इसलिए लंगर निकालना बहुत जरूरी है। कब तक हम इसी आसक्ति में पड़े रहेंगे कि हम स्त्री हैं पुरुष हैं, ठीक है उस तरह से हमें कार्य करना होता है, लेकिन पहले लंगर उठाया जाए कि मैं कृष्ण का दास हूं। सुबह उठते ही ये लंगर उठा देना है, मैं गुरु वैष्णव का दास हूं, मैं आज साधना करूंगा सेवा करूंगा, हे गुरुदेव हे कृष्ण आप प्रसन्न हो उससे, इस भावना में रहे, तब जो है हम तीव्र प्रगति कर सकते हैं, और नहीं तो लंगर ही पड़ा रहेगा, बड़ी कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस लंगर को उठाने का प्रयास करना चाहिए। समय होगा तो हम बात करेंगे इसके ऊपर कि कैसे लंगर उठ सकता है। मन केंद्र बिंदु है, क्योंकि उसी से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जो ही वह भौतिक वस्तु मिल जाती है तो मन पर उसका प्रभाव पड़ता है और हम कष्ट पाते हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट है, मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मेरी करताल है, ये प्रभाव होता है। इसीलिए ब्राह्मण लोग अधिक संग्रह नहीं करते थे, अधिक धन भी संग्रह नहीं करते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जब धन बहुत हो जाता है तो वो सिग्नल भेजता रहता है, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, वो सूचना देता रहता है कि आपको तपस्या करने की क्या जरूरत है, मैं आपका ध्यान रखूंगा या रखूंगी जो भी है। तो बहुत धन होता है तो व्यक्ति कहता है मुझे भजन करने की क्या जरूरत है, जो गरीब है वो करें, जो भुखमरे हैं वो करें, जो पढ़े लिखे नहीं वो करें, मेरे को क्या जरूरत है, मेरे पास उस भगवान ने सब कुछ दिया हुआ पहले से। तो ये जो है ब्राह्मण जानबूझ करके ब्रह्मा जी को भी ये बात बोले थे कि जो निष्किंचन है, जो धन निष्किंचनों का है वो करो, यानी तप। तो ब्राह्मण जो है तपोधन तपस्या करने में अपने को सफल मानते, भौतिक वस्तु इकट्ठे करने में नहीं, क्योंकि वह ममता का निर्माण करेंगी ही करेंगी ही करेंगे ही। हर वस्तु जो आपके रूम में है वह सिग्नल भेजती रहती है मेरा उपयोग करो। तो हमारी मति जो है भगवान से हट करके इन वस्तुओं में चली जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे वस्तु मिल जाती है मन पर उसका प्रभाव होने लगता है, और हम ये भी सोचते हैं कि ये वस्तु हमेशा हमारे पास रहेगी। आपने देखा है कभी कोई मोबाइल फोन हो या कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम सोचने लगते हैं ये वस्तु हमेशा ऐसी ही रहेगी और हमेशा मेरे पास रहेगी, और चोरी हो जाती है टूट जाती है, स्वाभाविक सी बात है, तो क्या होगा, दुख होता है। तो इसलिए आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की शिक्षा शास्त्र नहीं देता है। उदाहरणार्थ ठीक है, उदाहरणार्थ पांच तत्वों, पांच ज्ञानेंद्रियों तथा पांच कर्मेंद्रियों के बल पर हम एक बहुत सुंदर कार बनाते हैं। ये लाइन समझ में आ रही होगी, पांच तत्वों से कार बनी हुई है और ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से कार्य करके व्यक्ति कार बनाता है, परंतु जब किसी दुर्घटना में वे कार नष्ट हो जाती है तो मन को पीड़ा पहुंचती है जिसके माध्यम से जीवात्मा को कष्ट होता है। बहुत सुंदर बात, एक भक्त बोले जब पैदा हुए थे पानी की बोतल भी साथ में नहीं लेके आए थे, कोई लाया था साथ में कि भाई एक दिन पानी नहीं मिला तो माँ ने पानी नहीं पिलाया तो हम आरू बोतल ले चले कोई पी जाए, पानी की बोतल भी नहीं लेके जाए। अच्छा जो हो सकता है मरते समय लेके जाते हो साथ में, उसके लिए भी बाद में यहां से पानी दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। पानी की बोतल लेके नहीं आए, पानी की बोतल लेके जा नहीं सकते, और बीच में हाय हाय करते रहते हैं हम लोग कि हाय इतना नुकसान हो गया। और यही बात आपको याद हो, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि जब तक जीव शोक और मोह से ग्रसित रहेगा भगवान की भक्ति करेगा कैसे। तो इसलिए बार बार सुनना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो वस्तुएं हैं भगवान ने हमको दी हैं उनको हम यमुना जी में फेंक दें या किसी और व्यक्ति को दे दें जो अयोग्य है, लेकिन इनका उपयोग भगवान की सेवा में कर लेना ही परम बुद्धिमानी है। लेकिन उनमें ममता नहीं होनी चाहिए कि वस्तुएं मेरी हैं, ये केवल मेरे केयर में है, ये ध्यान रखना चाहिए। इवन शरीर भी, तथ्य तो यह है कि जीवात्मा मन के साथ साठ गांठ करके भौतिक स्थिति उत्पन्न करता है। साठ गांठ मतलब अलायंस, मन से उसकी कड़ी बंधी हुई है, जिस कारण से जो मन और शरीर की पीड़ा है, कष्ट है, उसको वो अपना मान रहा है। क्योंकि पदार्थ विनाशशील है, अतः भौतिक स्थिति के कारण जीवात्मा कष्ट भोगता है। बहुत सुंदर बात है, विनाशशील है कोई भी वस्तु, चाहे मेरा शरीर, चाहे मेरी बुद्धि, चाहे मन, सब परिवर्तनशील है। एक दिन हमारी बुद्धि, जिस पे हमको बहुत गर्व है, वह भी छीन ली जाएगी। विश्वास करें या ना करें, जिन हाथों पे बड़ा गर्व है या जीभ पे बड़ा गर्व है कि हम बोल पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, सब छीन लिया जाएगा। मृत्यु सर्व हरस चाहम। और जीव कुटस्थ है, वो कभी परिवर्तनशील नहीं है, तो बिल्कुल विपरीत स्थिति में है, इस कारण से वो दुखी होता रहता है। अपना जो गुण है वह उन वस्तुओं पर आरोपित करता है कि ये वस्तुएं शाश्वत हैं, ये वस्तुएं आनंदमय हैं, ये ज्ञानमय हैं, जबकि उनमें से वो कोई भी गुण वहां पे उपस्थित नहीं है, इस कारण से वो दुख भोगता है। तो इस साठ गांठ से बचना चाहिए, अन्यथा जीवात्मा समस्त प्रकार से सभी भौतिक स्थितियों से विरक्त है। अन्यथा अर्थात अगर अपनी पहचान वह मन से शरीर से नहीं कर रहा है तो उसे कोई कठिनाई नहीं। जैसे आप सब लोगों ने अपने पूर्वी जीवन में, भक्ति के पूर्व के जीवन में क्रिकेट जरूर देखा होगा, हाथ खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। 11 लोग इधर से खेल रहे हैं, 11 लोग उधर से खेल रहे हैं, क्या पूरा भारत और पाकिस्तान खेल रहा है? हाँ या ना? नहीं। और अगर 11 लोग हार गए, कुछ एक गेंद को इधर उधर नहीं पहुंचा पाए, तो पूरे भारत की हार हो गई। और आप सब लोग को अनुभव है कि हृदय में कितना दुख लगता था कि आज भारत हार गया। कुछ लोग सुसाइड कर लेते थे, कुछ लोग टीवी फोड़ देते थे। तो ये क्यों? इसलिए क्योंकि अपनी पहचान हम उन पूरे भारत की पहचान, अपनी पहचान भारत से कर रहे हैं और पूरे भारत की पहचान उन 11 लोगों से कर रहे हैं। ये है मन की साठ गांठ। तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। साहब 10 साल पहले आपने बहुत बुरा कहा मुझको, 7 साल में तो तुम्हारा पूरा शरीर ही परिवर्तित हो गया, तो बोला किसको? इस प्रकार से हम शोक और मोह में पूरा जीवन बिताते रहते। ठीक। जब मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त होता है, जो आध्यात्मिक जीवन का सत्य है, तो उसे अच्छी तरह पता रहता है कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, अतः उसे शोक या गर्व प्रभावित नहीं करते। जीव समझ पाता है कि वह जगत का नहीं है। और गर्व क्यों नहीं होता? क्योंकि वह समझ पाता है कि जितना कुछ भी वो कर पा रहा है भगवत कृपा से कर पा रहा है, एकदम उसे स्पष्ट होने लगता है। मैं समय कम है, चलिए ठीक है, मुझे याद दिला दीजिएगा अविद्या वाला पॉइंट, अगर समय रहा तो उसको हम चर्चा करेंगे। कैसे हम इस अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम आखिरी के समय में डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित होता है, उसे तत्काल पर ब्रह्म की अनुभूति होती है और पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाता है। चलिए हम बता ही देते हैं। देखिए, क्यों भक्ति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? घबराने की जरूरत नहीं है, हम कुछ डिप्रेसिंग नहीं बोलेंगे। माया के 3 भाग हैं, अगर समय बचा तो मैं क्विज लूंगा, इसलिए सुनिए ध्यानपूर्वक। चक्रवर्ती बात बताते हैं, माया के 3 भाग हैं। एक है प्रधान, यानी ये सारी जो भौतिक वस्तुएं इस प्रधान से ही आती हैं। कौन सा है एक भाग? प्रधान, गांव का प्रधान नहीं, भौतिक तत्व है। ठीक है। दूसरा है विद्या और तीसरा है अविद्या। इतना याद हुआ? विद्या, अविद्या और प्रधान। प्रधान से सारी भौतिक वस्तुएं आती हैं, जो हम ये देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अब विद्या से क्या होता है? विद्या के द्वारा जीव अपने को इन वस्तुओं से अलग देख पाता है। विद्या क्या कर पाती है? विद्या के द्वारा क्या होता है? हम अपने आप को इस शरीर से अलग देख पाते हैं। और अविद्या से क्या होता है? हम अपने आप को ये शरीर मानने लगते हैं, और साथ साथ अपना जो आनंदमय स्वरूप है और भगवान का जो स्वरूप है उसके बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं, पता ही नहीं चलता। तो भक्ति करने से क्या होता है? ज्ञानी लोग जो है अविद्या तो नष्ट कर लेते हैं, लेकिन विद्या रह जाती है। और विद्या के द्वारा यह समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है। लेकिन भक्ति करने से हम भगवान की चिद शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं। कौन सी शक्ति? चिद शक्ति। और ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया, जब तक जीव भगवान की चिद शक्ति के संपर्क में नहीं आता, वह भगवान को कभी नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना जा सकता है जैसा मैं हूं, क्योंकि भक्ति के द्वारा हम चित्त शक्ति के संपर्क में आते हैं। कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? भक्ति के द्वारा हम किस कौन सी शक्ति के संपर्क में आते हैं? चित्त शक्ति। और वह चित्त शक्ति स्वयं ही भगवान की अनुभूति जीव को करा देती, यही बात प्रभुपाद बता रहे हैं। तो जब व्यक्ति की अविद्या पूरी तरह नष्ट हो जाती है, भगवान की भक्ति करने के द्वारा उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। नाम जप करके, भागवत श्रवण करके, भगवत गीता श्रवण करके, प्रसाद खाके, भगवान का दर्शन करके, किसी भी तरह से भगवान की जो नवदा भक्ति है उसके द्वारा अविद्या का नाश होने लगता है, विद्या का भी नाश हो जाता है। तब व्यक्ति समझ पाता है कि वह भगवान का दास है और भगवान का वह अनुभव कर पाता है अपने। जब उसको भगवान से प्रेम होगा तब वह भगवान के सुख का अनुभव कर पाता है। सब जानते हो आप लोग कि पीलिया के रोगी को मीठी चीजें पसंद नहीं है, तो पीलिया के रोग को अविद्या से तुलना की जाती है। तो हम कई बार सुनते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हमें इसको अनुभूति करने के लिए आत्मा की तरह कार्य करना होगा। ये भागवत सुनना आत्मा का कार्य है, नाम जप करना आत्मा का कार्य है। भले ही हमको अच्छा ना लगे, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा, हम अगर करते रहते हैं तो अब एक टर्निंग पॉइंट आता है कि हमको करना बहुत अच्छा लगता है। तो हम समझ सकते हैं इसे, हमारी अविद्या का शमन हो रहा है और हम आत्मा की तरफ, आत्मने स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये तरीका है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, नहीं समझ में आया है तो फिर कोई बात नहीं, हरे कृष्णा करते रहिए। माया के तीन भाग क्या हैं? धन, विद्या और अविद्या। तो आप सभी लोगों को हरे कृष्णा बहुत अच्छा लगता है, हमारी बीमारी को अच्छा नहीं लगता, तो बीमारी के सेवक हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं? कभी बोलते हैं प्रभु जी हमारा मन नहीं करता, हम जब क्यों करें? अरे भाई तेरे को बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी बीमारी को अच्छा नहीं लगता, तो बीमारी को तो ठीक करना है ना। तो इसलिए इस पर बिल्कुल ना ध्यान दें कि आपको कैसा लग रहा है, करते रहिए। एक बार प्रभुपाद से किसी ने कहा कि मेरे को मन नहीं कर रहा करने का, तो कहते हैं तुम्हारे मन के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम खाली करो। परमपूज राधागोविंद महाराज जी, जिनके शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज जी मन तो लगता नहीं है, तो महाराज बोले तुमको मन लगाने के लिए बोला कि तुमको जीभ से जप करने के लिए बोला? मन लगाने के लिए बोला मैंने, तो जीभ से जप करने के लिए बोला। तो जीभ से करने मात्र से हमारी अविद्या नष्ट होती है, भक्ति कैसे भी करें हमारी अविद्या नष्ट हो रही। हरि हरति पापानी दुष्ट चित्तेर अपिस्मृता, प्रभुपाद जी कोट करते हैं, ये वंशीधर जी की टीका में आता है, बहुत सुंदर बात। हरि हरति पापानी दुष्ट चित्तेर अपिस्मृता, जिसका दुष्ट चित्त है, पाप से भरा हुआ है, भोग वासना से लिप्त है, ये सारी प्रॉब्लम देख रहे हैं, उसके पापों को भी हरि हर लेते हैं। हर लेते हैं अर्थात चोरी कर लेते हैं। जैसे आप सोचिए हम लोग बहुत पैसा रखे हैं अलमारी में दबा करके, तो चोर आके पूछता नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं लेता है, क्या मैं आपका चोरी कर सकता हूं धन? नहीं करता ना, वो आएगा चुपके से चोरी कर लेगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, हरि का नाम लेता है, हरि हरति, वो हर लेते हैं। हर लेते हैं मतलब जबरदस्ती हर लेते हैं सारे पाप। पाप कहां रहते हैं? अंतःकरण में, बस खींच ले जाते हैं जो भगवान का नाम उच्चारण करता है। नाम व्याहरणम विष्णु, तो बोलने पर हम ध्यान दें, भगवान का नाम उच्चारण करें, भागवत बोलें, भागवत सुने, अपने आप ही पाप नष्ट हो जाते हैं, अविद्या नष्ट हो जाती है। और जब अविद्या पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी तब हम बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। प्रसन्न का एक अर्थ बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं पवित्र, शुद्ध, अविद्या से रहित जीव जो है अब कोई शोक और मोह नहीं करता। जैसे हम सपने में देख रहे होते हैं कि बड़ा पैसा जा रहा है, बिजनेस में बड़ा नुकसान हो रहा है, और जैसे सपने में आ जाते हैं, सॉरी जागृत अवस्था में जाते हैं, तो क्या होता है? अरे कुछ नहीं, स्वप्न मात्र था। उसी प्रकार से जितनी मात्रा में हरि नाम के द्वारा हम जागृत हो जाएंगे, उतना ही जगत के शोक और मोह से हम प्रभावित नहीं होंगे। ये हमारा थर्मामीटर है, बैरोमीटर है कि हम भक्ति में कितना प्रगति की है। किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है, कितना शोक और मोह से मुक्त हुए हैं ये स्वयं मालूम चल जाना चाहिए। ठीक है, वह न शोक करता है न किसी वस्तु की इच्छा रखता है। अन्यत्र उन्होंने भगवद गीता में ही कहा है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस भद्र जगत में जीवात्माएं मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं। ये आप सब जानते हैं भिन्न अंश हैं, अर्थात जैसे अग्नि होती है उससे निकलने वाली चिंगारी, और भिन्न का अर्थ यह भी है कि जीव मुक्तावस्था में भी भिन्न रहता है, उसका व्यक्तित्व रहता है और वह कृष्ण की सेवा करता है। इसको कई बार गीता में पुष्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मुक्त अवस्था में वह भगवान से मिल जाएगा, परमात्मा में लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बद्ध दशा के कारण वे मन समेत छह इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रही हैं। क्या संघर्ष है प्रहलाद महाराज? यहां कोई ब्रह्मचारी है? ये क्या प्रश्न है, आपको अधि ब्रह्मचारी है? नहीं भाई, हम शादीशुदा है। अरे लाल कपड़ा पहने वैसा बोल रहे हो? 11 पत्नियां हैं? 11 पत्नियां? अरे सब जानते हैं 11 पत्नियां क्या है, हमारी इंद्रियां क्या, 5 ज्ञान इंद्रियां और 6 मन को मिलाकर के सारी इंद्रियां, और पत्नियां आपस में मिलती भी नहीं है। कान कहेगी इधर जाना है, आंख कहेगी उधर जाना है, वाणी कहेगी कुछ और बोलना है, टांग कहेंगे उधर और जाना है, इसमें हमारी बड़ी फजीहत है। तो यही नरसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि सारी पत्नियों को, इन सारे इंद्रियों को भगवान अपनी सेवा में लगा दीजिए। ये बात बार 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 बोलते हैं प्रभुपाद, जिसको कोट करते हैं, कामादि नाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा तेषाम जात मई न करुणा नात्रपा नोप शांति उत्सृजताम अथ यतो पतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धिस त्वाम आयतम शरणम माम नियुं श्वात्म दासे। यही प्रार्थना भगवान से करना चाहिए, भगवान अनादि काल से मैं इस काम इच्छाओं के कारण बहुत इनकी सेवा करी, इंद्रियों की खूब सेवा करी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो संतुष्ट हो जाए, ऐसा नहीं वो कह दें कि तुमने बहुत कर लिया अब तुम सेवा से निवृत्त हो जाओ, रिटायर हो जाओ, नहीं, लेकिन अब मेरी बुद्धि आ गई है और मैं समझ गया हूं कि मैं आपका दास हूं, मैं आपकी सेवा में आया हूं, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। माम नियुंश्वात्म दासते, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। ये भक्त का भाव है, ये हरे कृष्ण मंत्र का भाव है। बहुत इसे कहते हैं जीवात्मा का जागृतिकरण। क्या कहते हैं? जीवात्मा का जागृतिकरण, समझे कि वो है कौन और कृष्ण की शरण में जाए। कृष्ण की शरण में जाने का मतलब नहीं कृष्ण में शरण में आया बस अब आप करो जो कुछ करना, हमें कुछ करना नहीं है, नहीं, शरण में जाने का मतलब शरण में आया हूं, अब आप मुझे सेवा में नियोजित कीजिए। ठाकुर जी कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं, हमारे पास इंद्रियों को सीमित करने की क्षमता नहीं है, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। निसंदेह जीवात्मा निसंदेह भगवान का अंश रूप है और भौतिक स्थितियों से प्रभावित नहीं होता, किंतु मन प्रभावित होता है, अतः इंद्रियां प्रभावित होती हैं और जीवात्मा इस जगत में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहता है। जब हम अपनी पहचान देह से करेंगे, मन से करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से भय होगा, और जब हमारा मन और बुद्धि और इंद्रियां भगवान की भक्ति से शुद्ध हो जाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हम किस प्रकार से आत्मा हैं और हमें इस जगत की कोई वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे सोक्रेटस नाम का एक व्यक्ति था, ज्ञानी था, तो वो एक सिद्धांत दे रहा था, वो राजा को पसंद नहीं आया तो कहा से जान से मार दो, तो जब सैनिक उसको मारने के लिए आए तो कहा तुम बात नहीं मान रहे हो, हम तुमको जान से मार देंगे। तो बोलेगा जान से मारना बाद में, पहले मुझे पकड़ो तो सही। समझ गए आप लोग? जान से तो बाद में मारोगे, पहले पकड़ के दिखाओ। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक कोटेश में कि वह भी ज्ञानी था, वह समझ रहा था कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। हम यहाँ पे विराम देंगे, कोई प्रश्न है किसी का तो हम ले सकते हैं, 5 मिनट है, अदरवाइज का समाप्त। कोई प्रश्न है किसी का? ओके, चलो स्टॉप हियर। श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।